نحمده نصلي على رسوله الكريم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میری گفتگو کا عنوان ہے طہارت. طہارت کا عنوان بہت تفصیلی ہے. آج اس سلسلے میں ہمارا پہلا پروگرام ہے, اس کی پہلی قسط ہے. آئندہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اسی عنوان پر اور بھی لیکچر اور درس جو ہے وہ کریں گے. آج ہے طہارت, طہارت اور پاکیزگی کی حقیقت اور دین میں اس کا مقام, اور اس کے ساتھ قضاء حاجت کے آداب. اور آئندہ جن عنوان پر ہم بات کریں گے اس میں وضو اور غسل کا بیان, تیمم اور مسح, حیض, نفاس اور استحاضہ, یہ جو ناپاکی کی حالتیں ہیں. تو انشاءاللہ ان سب کو جو ہے وہ کور کریں گے. میں آغاز کرتی ہوں. ابھی میرا عنوان ہے طہارت, طہارت اور پاکیزگی کی حقیقت اور دین میں اس کا مقام. اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا, ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا. دین اسلام اس دنیا کی سب سے اہم, بہترین اور اصل حقیقت ہے, نعمت عظمیٰ. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اور اسلام بھی کیسا دین, جو مکمل دین ہے, جس نے کمرے کی چار دیواری سے لے کر کمرے کے اندر خلوت سے لے کر حکومت کے تخت, سیاست کے میدان, جزویات سے لے کر کلیات تک, انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی, ہر میدان میں ہمیں رہنمائی دی ہے الحمدللہ. اور اللہ کی ہم جو ہے وہ کیسے بیان کریں. آسمان کے جو ستارے ہیں انگنت ہیں, بارش کے قطرے, صحرا میں ریت کے ذرے, زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں, اور اسی طرح سمندر میں, دریا میں, ندی نالوں میں جو پانی ہے اس کے قطرے, اور درختوں کے پتے. پھر آپ دیکھیں کہ جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں, اور جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں, تو بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کی جا سکتی. تو اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی خوبی, اللہ کا شکر ہم سب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اور کیسے, جیسے کہ اس کی عظیم, اس کے چہرے کے مطابق, اور جیسے اس کی عظیم حکومت دنیا میں ہے اس کے مطابق. اور اللہ کی حقیقی معرفت اللہ کے سوا اور کوئی جاننے والا نہیں ہے. ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں, ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں, ہم اس پر استغفار کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے, کہ وہ اپنے رب کی رضا چاہتا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے, کوئی کسی سے شکریہ یا تھینک یو نہیں چاہتے, لیکن ایک بات چاہتے ہیں, اور وہ کیا, کہ میرا اور آپ کا رب ہم سب سے جو ہے وہ راضی ہو جائے. اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پورے کے پورے دین پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے, پورے کے پورے اسلام کو اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے, انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. اس سلسلے میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی کیا حیثیت ہے, اس کا کیا مقام ہے. آپ دیکھیے کہ दीन इस्लाम का सबसे पहला सबक तहारत का है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दीन इस्लाम के अबवाब अनगिनत हैं, और अगर उनको चार बड़े जो अकसाम हैं उसमें तकसीम किया जाए तो एक जो किस्म है या एक बाब वो तहारत का है। फिर आप देखिए कि दीने इस्लाम जिसमें नमाज, कुरान की तिलावत, काबा का तवाफ, रोजा रखना, हज करना, ये कोई भी इबादत जो है वो बगैर तहारत के, वुजू के, पाकी के जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। इस्लाम के सबसे अहम और बुनियादी रुकन जैसे नमाज, रोजा, हज, इसी तरह जो है वो हम जो भी नेकी के काम करते हैं तो उसके लिए तहारत का होना जरूरी है। अब तहारत जो है इससे क्या मुराद है? तहारत के एक मानी तो ये हैं कि हमारा कल्ब जो है वो पाक हो। कल्ब किससे पाक हो? शिर्क से, हसद से, रिया से, हर जो दिखावे वाला अमल है उससे हमारा दिल जो है वो पाक हो। तहारत के एक मानी ये हैं। और दूसरे मानी इसके ये हैं कि हमारा दिल, बदन, कपड़े, जिस्म, ये भी जो है वो नजासत से पाक हो। और नजासत छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी, हद से अकबर भी है और हद से असगर भी है। तो हमें क्या करना है कि जाहिरी तहारत भी हासिल करनी है और बातनी तहारत भी हासिल करनी है। इस सिलसिले में कुरान मजीद की आयात को अपने सामने रखें तो अंदाजा होता है कि किताबो सुन्नत की रूह से तहारत वाजिब है, फर्ज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरत अल माईदा आयत नंबर 6 में फरमाते हैं, वा इन कुंतुम जुनुबन फत्ताहरू, और अगर तुम नापाक हो, जुनबी हो, तो तहारत हासिल करो। फिर इसी तरह आप देखिए कि सूरत मुदस्सिर में आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वह थियाबका फतवाहिर, और अपने कपड़े पाक रखिए। और सूरत मुदस्सिर इब्तदाई जमाने की नाजिल शुदा सूरतों और आयात में से है। अब इस आयत में भी ये बात कही जा रही है, जहां पहला हुक्म ये दिया गया कि अपने रब की बड़ाई बयान कर, तौहीद का ऐलान कर, और वहीं पर दूसरा हुक्म ये दिया गया कि आप अपने कपड़े जो हैं उनको पाक साफ रखिए। फिर आप देखिए कि कबा की बस्ती, इसमें जो लोग रहते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तारीफ की। ये बस्ती जो थी ये मदीना मुनव्वरा के बहुत करीब थी। इसके लोग इसमें जो रहने वाले लोग थे कबा में, वो नमाज के लिए तहारत का बहुत ज्यादा एहतमाम करते थे, बहुत ज्यादा ख्याल करते थे, हत्ता के कुरान में आयतें नाजिल हो गई। तो तहारत का ख्याल रखना ये उन अमाल में से है, अमाल सालेहा में से, कि जिसकी तारीफ अल्लाह ने कुरान में की है। सूरत तौबा आयत नंबर 108 अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं, फीही रिजालुन युहिब्बुना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, कि इसमें हमारे ऐसे बंदे हैं जो बड़े पाकीजगी पसंद हैं, जो तहारत को बहुत पसंद करते हैं, और अल्लाह ताला तहारत हासिल करने वालों को पसंद करता है, उनसे मोहब्बत करता है। तो मस्जिद कुबा में और कुबा की बस्ती में जो रहने वाले लोग थे वो कैसे हैं? तहारत इख्तियार करने वाले, तहारत का ख्याल रखने वाले, के आयत नाजिल हो जाती है, ये ऐसे लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है, हर दिल मचलता है, हर दिल तड़पता है, हर दिल की ये तमन्ना और ख्वाहिश है कि उसका रब उससे मोहब्बत करे, उसका रब उससे प्यार करे, उसे रब की कुर्बत हासिल हो। तो मेरी बहनों, ये ऐसे नहीं हासिल हो सकती। इसके लिए अपने ख्यालों में, अपने आमाल में, अपने ईमान में, अपने दिलों में, अपने अमलों में, अपनी एक एक चीज में जो है वो अल्लाह की याद को बसाना है, अल्लाह के अहकामात को, कुरान और सुन्नत को जिंदा करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मताला करके, उसका इल्म हासिल करके वैसा ही बनना है जैसा अल्लाह पसंद करता है और जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अल्लाह ताला सूरत मुदस्सिर में ये हुक्म देते हैं फसियाबका फतहिर वर्रुज्जा फाजुर के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े साफ रखिए और गंदगी से दूर रहिए, तो सोचें कि बाकी मुसलमानों को ऐसा करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। फिर आप देखिए कि तहारत और पाकी की अहमियत का अंदाजा इससे हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो हर नमाज से पहले वुजू करने का हुक्म दिया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भी यही पता चलता है। अगर किसी का पहले से वुजू हो तो कहा कि तुम दोबारा वुजू अगर कर लो तो अच्छा है, इसकी रग़बत दिलाई, और अगर वुजू के साथ मिसवाक कर ली जाए तो फिर जो है वो सोने पे सुहागा है, यानी दांत भी साफ हो रहे हैं, अजर बढ़ जाता है। फिर आप देखें हवा खारिज हो जाती है, कहा कि वुजू करो, टेक लगाई है, टेक लगाकर नींद आ गई है, सो गए हैं, फिर कहा कि वुजू करो, तहारत हासिल करो। तो हर मुसलमान को शौरी तौर पर तहारत के बारे में हसास बना दिया गया कि हर मुसलमान तहारत और पाकीजगी की हालत में जो है वो रहे, और उसके लिए अपनी रूह, अपना जिस्म, अपना दिल और अपने अमाल जो है उन सबको पाक साफ रखे। अगर कहीं पानी मुयस्सर नहीं तो कहा कि मिट्टी से तयमुम कर लो, और ये जो है ये तहारत और पाकी इख्तियार करने का एक नफ्सियाती एहसास है कि ऐ दिले जिंदा कहीं तू ना मर जाए, कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से, तो ये ख्याल रहना चाहिए कि मुझे पाक रहना है, कि जब तक पानी मुयस्सर नहीं है तो मिट्टी से कर लो, या ये कि पानी के इस्तेमाल से बीमारी बढ़ने का खतरा है, या ये कि सफर में है, पानी है तो सही पर थोड़ा है, या पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कहा इस सिलसिले में आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें क्या हुक्म देते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें पाक करना चाहता है, इसलिए तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार होना चाहिए। फरमाया मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज वलकिन युरीदु लियुतहिरकुम वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला गुसल, वुजू और तयम्मुम के अहकामात देकर तुम पर जिंदगी तंग नहीं करना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि तुम्हें पाक साफ करे और अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल करे ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। सूरत अल माईदा, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना ये हुक्म दिया, सूरत अल माईदा आयत नंबर 6, कि जो पाकी के अहकामात बयान किए गए हैं इसका मकसद तुम्हें तंगी में डालना नहीं है, मुश्किल में डालना नहीं है, बल्कि अल्लाह अपनी नेमत की तकमील करना चाहता है। तो इस्लाम जो है नेमत उज़्मा, और इसकी तकमील कैसे होती है, जिंदगी के हर मैदान में, हर पहलू में, हत्ता के जुज़ियात तक में आकर जो है वो अपनी पाकी तहारत पाकीजगी का ख्याल रखा जाए। याद रखिए रूह की पाकीजगी भी जरूरी है और लिबास और जिस्म की भी, जगह की भी और बिस्तर की भी, ये सब लाजम व मुलजूम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जात को इसका नमूना बनाकर दिखाया, कमाल दर्जे का नमूना, आपने तहारत और पाकीजगी का आला मयार कायम किया और उम्मत को भी पाक साफ रहने की ताकीद की। एक दफा एक सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनके बाल बिखरे हुए थे और मिट्टी से अटे हुए थे, बिखरे हुए, और इसी तरह जो कपड़े पहने थे वो भी जो है वो गंदे थे। तो जिनके बाल बिखरे हुए थे आपने उसको नापसंद किया, आपने उसे पूछा क्या तेरे पास वो चीज नहीं है जिसे तो अपने बालों को सवार लेता, तो इस तरह उसको बालों में कंघी करने का, संवारने का हुक्म दिया। और फिर इसी तरह जब वो दोबारा हाजिर हुआ तो देखा कि उसके जो है वो बाल देखे तो आपने फरमाया परागंदा बाल शैतानी फेल है, यानी ऐसे बाल जो के बिखरे हुए हैं, कंगी नहीं हुई, कहा कि ये शैतानी अमल है, शैतानी फेल है। फिर एक और सहाबी के जब मेले कुचैले और बुसीदा कपड़े आपने देखे कि उसने बड़े गंदे से कपड़े पहने हैं, तो आपने पूछा क्या तेरे पास वो माल नहीं है, तेरे पास वो चीज नहीं है। अब उस सहाबी से पूछा कि तेरे पास है कुछ माल कुछ चीज, तो उसने कहा कि जी हाँ बहुत कुछ है, ऊंट घोड़े बकरियां गुलाम सभी कुछ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर तुम्हारे रहन सहन से अल्लाह ताला के इनामात का इजहार होना चाहिए। खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत सफाई पाकीजगी नफासत को पसंद करते थे, हत्ता के जब आप सफर करते तो सफर में जो चीजें अपने साथ रखते उसमें तेल, कंगी, सुरमा, कैंची, मिसवाक, आईना, इन चीजों को अपने साथ रखते। फिर आप जो है अपने लिबास की सफाई के साथ साथ आप अपने मुंह की सफाई का ख्याल रखते, आप मिसवाक करते, और आपको पीलू की मिसवाक बड़ी पसंद थी, कसरत से उसका इस्तेमाल करते, उससे दांत बड़े अच्छे साफ होते हैं, और नमाज के साथ मिसवाक करना ये आपका मामूल था। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ने फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोकर उठते तो पहला काम मिसवाक करना होता, जब भी बाहर से घर तशरीफ लाते तो पहले मिसवाक फरमाते, हत्ता के हयात तैयबा का आखिरी अमल भी मिसवाक करना था। कि आखिरी जब आपके जिंदगी के दिन थे और आखिरी काम जो आपने किया वो मिसवाक करना था। तो आप देखें कि अब आमतौर पर आप बच्चों से क्या कहती हैं कि आपके दांतों से बू आ रही है क्योंकि आप ब्रश नहीं करती, अब मिसवाक की जगह ब्रश ने ले ली। तो किसी हद तक ब्रश उसकी जरूरत को पूरा करता है, लेकिन अगर मिसवाक मुयस्सर आ जाए और उसके लिए कोशिश की जाए और वो मिल जाए तो फिर ये तो सोने पर सुहागा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर भी अमल होगा और वैसे मिसवाक से दांत ज्यादा अच्छे साफ होते हैं। फिर आप देख लीजिए कि तहारत के सिलसिले में हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्राइवेट जिंदगी थी उसकी बातें भी हमारे सामने आती हैं, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा और अजवाज मुहतरात के जरिए, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि उम्मत को जिंदगी के किसी मैदान में किसी मामले में अंधेरे में छोड़े रखें या वो भटकते रहें। तो जिंदगी के हर मामले की, छोटे से छोटे मामले की भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई की, इस तरह नबूवत और रिसालत का हक अदा कर दिया। क्यों? वो मुसलमानों का तज़किया करने वाले थे, वो इंसानियत का तज़किया करने वाले थे, वो लोगों को दीन की तालीम देने वाले थे। हालांकि आप देखें कि आम जिंदगी में कोई शख्स ये पसंद नहीं करता कि उसकी अज़दवाजी जिंदगी, मियां बीवी की जिंदगी की जो बातें हैं ना बाहर आए, किसी और को पता चले, लेकिन लोगों की रहनुमाई के लिए, उम्मत की तालीम के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को भी गवारा कर लिया। और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अज़वाजे मुहतरात का कितना बड़ा एहसान है जो उम्मत मुस्लिमा के कंधों पर है, कि ये बातें भी जो है वो सामने आई। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस तरह की बातें थी, ऐसे नहीं कि खुतबा आपने दिया हो, मिंबर पर चढ़कर इसको टॉपिक बनाया हो, लेकिन आम जिंदगी में जब लोग मसाइल पूछते थे, सवाल पूछते थे, तो फिर आप उसका जवाब देते थे और रहनुमाई करते थे। और खास तौर पर अजवाजे मोहतरात के पास जो थी वो औरतें आती थी, वो सवाल पूछती थी पाकी नापाकी के बारे में, और बाद सहाबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे, तो इस तरह जो है उनकी रहनुमाई की गई। अब आप देखें कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो से अहले किताब ने बड़े तंजिया अंदाज में एक सवाल पूछा, और वो तंजिया अंदाज क्या था कि इस्लाम जो आपका दीन है ये कैसा दीन है। यानी मुशरिक मजाक के तौर पर इनसे कहने लगे कि तुम्हारे पैगंबर ने तो तुम लोगों को सारी ही बातें सिखाई हैं, यहां तक के पखाने का तरीका भी, रफा हाजत का तरीका भी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो उसके इस तरह मजाक उड़ाने पर आपने कोई माजरत नहीं की, आप परेशान नहीं हुए, बड़े एतमाद के साथ, बड़े फखर के साथ आपने कहा जी हाँ बेशक उन्होंने हमको सभी कुछ सिखाया है और अस्तंजे के मुतालिक भी जरूरी हदायत दी हैं। फिर आपने फरमाया, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा उन्होंने हमको इससे मना किया है कि पखाना या पेशाब के वक्त हम किबले की तरफ रुख करें, या ये कि हम दाएं हाथ से इस्तंजा करें, या ये कि हम इस्तंजे में तीन पत्थरों से कम इस्तेमाल करें, या ये कि हम इस्तंजा करें और ऊंट या घोड़े या बैल वगैरह किसी चुपाए के फजले या हड्डी से, जैसे उनके पखाने से या उनकी किसी हड्डी से जो है ना हम जो है वो तहारत हासिल करें। तो आप देखें कि उन्होंने बड़े एतमाद के साथ ये कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफाए हाजत के तरीके भी सिखाए हैं और तमाम आदाब भी सिखाए हैं, और इस तरह यहूदो नसारा जो मजाक कर रहे थे, तमस्खुर कर रहे थे, वो अपना सा मुंह लेकर रह गए। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिलसिले में रहनुमाई न करते तो आज उम्मत मुस्लिमा जो है क्या करती कि जानवरों की सी जिंदगी बसर करती। और अब आप देख लें कि मगरिब की दुनिया के बारे में जो है वो कि तहजीब, तरक्की, तालीम, लेकिन तहारत और पाकिजगी का, गुसल का, पानी के इस्तेमाल का जो निजाम इस्लाम में राइज है, जिसकी तालीम और तलकीन कुरान ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आप बाकी मजाहिब को खोल कर देख लें कि तहारत और पाकिजगी के सिलसिले में रहनुमाई नहीं मिलती। अब यहाँ पे देखें कि बहुत बात होती है एटिकेट्स की, लेकिन जो है वो पानी का इस्तेमाल ही नहीं है। जैसे मियां बीवी का ताल्लुक है या रफाए हाजत है, बाथरूम का इस्तेमाल है, तो टिश्यू है, परफ्यूम्स हैं और खुशबुएं हैं, उनका इस्तेमाल है कि ऊपर ही ऊपर ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख सहर कर ना सका। इलामा इकबाल ने एक और मौके पर कहा, तूने क्या देखा नहीं मगरिब का तहजीबी निजाम, तूने क्या देखा नहीं मगरिब का तहजीबी निजाम, चेहरा रोशन अंदरून चंगेज से तारीख तर। अब इस मौके पर हमें ये जानना भी जरूरी है कि ये तहारत और पाकिजगी के जो आदाब हैं हम खुद भी समझें और इसके साथ साथ हम अपने बच्चों को भी सिखाएं। जब बच्चे बालिग होने के बलूगत के करीब हों तो बलूगत से पहले हमें तहारत और पाकिजगी के जो अहकाम हैं और इसके जो मसाइल हैं वो बच्चों से डिस्कस करने में, उनको समझाने में शर्म, झिझक और हया महसूस नहीं करनी चाहिए। इस सिलसिले में दो रवैये हो सकते हैं। अव्वल तो एक ये कि बाज लोग जो है ना बच्चों से जो गैप रखते हैं तो उनसे आम बातें भी नहीं करते और ये भी नहीं करते। अब इसके लिए फिर होता क्या है कि बच्चे जो है वो इधर उधर या तो जो है वो मुख्तलिफ रसाइल, अखबारात और वेबसाइट पे जाके मताला करते हैं, और या फिर ये कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ के स्कूलों में वक्त से बहुत पहले ही जिंसी तालीम जो है वो दे दी जाती है। तो एक तो ये रवैया है कि बच्चों को जो है वो शुतरे बेमुहार बनाकर ऐसे ही बस छोड़ दिया जाए कि जहां से भी उनको मिले, जो भी उनको दे, सही दे, गलत दे, ना दे, और शर्म और झिझक की वजह से बच्चों की रहनुमाई नहीं की। अच्छा, फिर इसमें जो है वो दूसरा रवैया जो हमारे सामने आता है वो ये कि एतदाल का रवैया है। एक तो ये कि बात ही बिल्कुल नहीं की, छोड़ दिया, पता नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, और दूसरा रवैया क्या है कि दूसरों के रहनो करम पर छोड़ दिया। लेकिन इन दोनों के बीच में एतदाल का रवैया इख्तियार किया जाए और इस सिलसिले में जो है वो तहारत पाकिजगी के सिलसिले में कुरान और हदीस का मताला करते हुए उससे अहकाम को जानते हुए अपने बच्चों की रहनुमाई करनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो बलूगत से पहले उन्हें पता चलनी चाहिए, कुछ ऐसी हैं जो शादी से पहले बच्चों को पता होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो सही तरीके से सारे काम करें। और आप देखें कि इसमें कोई शर्म और झिझक की बात नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा हयादार थे, कमारी लड़की से भी, एक दुशीजा लड़की जो होती है उससे भी ज्यादा आप हयादार थे। लेकिन जब किसी ने आपसे मसाइल पूछे, सवाल पूछे, आपने इसमें कोई शर्म और झिझक महसूस नहीं की। इसी तरह हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ना फरमाती हैं, मदीना मुनव्वरा की खवातीन जो है इनकी तारीफ करती हैं हजरत आयशा रजी अल्लाह ना, और फरमाती हैं कि अंसार की औरतें कितनी अच्छी हैं कि मसाइल दरियाफ्त करने में शर्म महसूस नहीं करती। इमाम इब्ने जुरेज फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद हजरत अता जब कोई मसला बयान करते तो मैं पूछता कि क्या ये हदीसे रसूल है या किसी आदमी की राय। तो इससे क्या बात पता चलती है कि पता होना चाहिए कि जब हम अमल कर रहे हैं तो इसकी सनद क्या है, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें इस सिलसिले में जो है वो रहनुमाई मिलती है। इसकी जो है वो तहारत की अहमियत और फजीलत के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हदीस भी आप सामने रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे ये फरमाया कि अत्तहूरु शत्रुल ईमान, कि तहारत आधा ईमान है। इस हदीस को मुस्लिम ने रवायत किया है। फिर इसी तरह आप देखिए कि सूरत तौबा, सूरत तौबा में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं और उसमें भी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो जो तहारत इख्तियार करने वाले हैं, जो पाकी इख्तियार करने वाले हैं, उनकी जो है वो तारीफ की है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को तहारत और पाकी जो है वो बहुत पसंद है। इससे हमारे लिए फिर अमल का क्या उसूल निकलता है कि हम अपनी अमली जिंदगी में जो है वो तहारत जो है उसको इख्तियार करें। जैसे कुरान मजीद की में सूरत तौबा आयत नंबर 108 जिसमें तबा की बस्ती वालों की तारीफ की गई, इसी तरह सूरत अल बकरा और इसकी आयत नंबर है 22, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्वाहिरीन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाको साफ रहने वाले अपने बंदों को महबूब रखता है। फिर आप देखिए कि ये बात भी हमारे लिए बहुत अहम है कि एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वुजू यानी तहारत करने से हाथ मुंह और पांव के तमाम सगीरा गुना माफ हो जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला अस-सुनाबही फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मोमिन आदमी वुजू तहारत करने के लिए कुल्ली करता है तो इसके मुंह के सगीरा गुना खत्म हो जाते हैं, जब नाक साफ करता है तो नाक के सगीरा गुना माफ हो जाते हैं, जब चेहरा धोता है तो चेहरे के गुना खत्म हो जाते हैं, हत्ता के आंखों की पलकों के गुना भी खत्म हो जाते हैं, फिर जब हाथ धोता है तो हाथ के गुना खत्म हो जाते हैं, हत्ता के नाखूनों के नीचे से भी गुना मिट जाते हैं, फिर जब आदमी सर का मसा करता है तो सर के गुना माफ हो जाते हैं, हत्ता के कानों के गुना भी मिट जाते हैं, जब पांव धोता है तो पांव के गुना माफ हो जाते हैं, हत्ता के पांव के नाखूनों से भी गुना धुल जाते हैं, निकल जाते हैं। वुजू करने के बाद वुजू के जरिए जब वो तहारत हासिल करता है, आदमी मस्जिद की तरफ आता है और नमाज पढ़ता है तो ये सारे अमाल इसकी नेकी में इजाफे का बायस बनते हैं। इस हदीस को जो है वो निसाई ने रवायत किया है। इससे क्या बात पता चलती है कि वुजू जो है ये भी तहारत हासिल करने का एक तरीका है। और अहम बात ये है कि तहारत हासिल करने की नीयत करनी चाहिए, ऐसे ही मुंह धोना नहीं बल्कि पाकी और तहारत हासिल करने की नीयत, इसलिए कि इन्नमल आमालो बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है, और जब तक जो है नीयत नहीं करेंगे तो पाकी जो है वो हासिल नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया मिफ्ताहु सलाते तुहूर, नमाज की चाबी तहारत है। अब आप देखें मिफ्ताह फाताहा और मिफ्ताह चाबी को कहते हैं और लफ्जी मानी है खोलना, बंद चीज है तो उसको खोला जाए। तो अब यहां पे नमाज की चाबी जो तहारत है इससे मुराद क्या है? वुजू करना, वुजू करना। तो वुजू जो है ये नमाज की चाबी है और जब तक वुजू नहीं करेंगे नमाज नहीं होगी। फिर आप देखिए कि طہارت کی اہمیت کے سلسلے میں یہ حدیث بہت ہی جو ہے وہ ڈرانے والی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہذا اس سے احتیاط کرو کہ جو پاکی کا خیال نہیں رکھتے اور جیسے پیشاب کے قطرے وغیرہ، تو کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ قبر میں عذاب ہوتا رہتا ہے، اور یہ حدیث بہت ہی ڈرانے والی ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہو اور اس کی وجہ یہ کہ جو وہ فر تھا وہ جب عام زندگی میں پیشاب کرتا تھا تو چھینٹوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. مثلا آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ تم میں سے کوئی ہرگز ایسا نہ کرے کہ اپنے غسل خانے میں پہلے پیشاب کرے پھر اس میں غسل یا وضو کرے. اکثر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بیت الخلاء الگ ہے، واش روم الگ ہے، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ خیال ہی نہیں رکھتے اور جو ہے وہ وہیں پر جو ہے وہ پیشاب کر دیتے ہیں. تو بچوں کو بھی یہ تعلیم دینی چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پیشاب کے چھینٹے نہ تو کپڑوں پہ پڑے اور نہ ہی ہاتھ پر یا پاؤں پر، اور اگر کوئی ایسی کبھی بات ہو جائے تو فوراً جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا چاہیے. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری طہارت ہے اور دوسری باطنی ہے. ظاہری سے معنی کیا ہے کہ جتنی بھی پلید اور ناپاک چیزیں ہیں اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک کیا جائے، جیسے لباس، بدن، جائے نماز، جگہ. تو اگر ناپاک ہے تو اس کو پاک کیا جائے، اور ناپاکی کی طہارت جو ہے وہ وضو، غسل اور تیمم سے حاصل ہوتی ہے. تو یہ ہے ظاہری طہارت. اور ظاہری طہارت میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جیسے جو غیر ضروری بال ہیں بغل کے یا زیر ناف کے، تو ان کی صفائی کا بھی خیال رکھا جائے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ حیض، نفاس اور اس کا جو خون ہے، یا میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اور اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ طہارت کا خیال رکھنا. پھر اسی میں جو ہے وہ یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جیسے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ وضی جو ہے، وضی یا ودی، اس کا جب اخراج ہوتا ہے تو بھی ناپاکی ہوتی ہے. ہم اس کو بھی انشاءاللہ جو ہے ابھی دیکھیں گے. تو ایک تو ہے کہ ظاہری طور پر طہارت، دوسرا ہے باطنی طہارت. اور باطنی طہارت میں کہ نفس کو گناہ، اللہ کی نافرمانی سے پاک اور صاف رکھا جائے، گناہوں اور نافرمانیوں سے سچی توبہ کی جائے، دل میں شرک، حسد، غصہ، کینہ، خیانت، بڑائی، خود پسندی، ریا، نمود و نمائش، کبر، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ کیسی پاکی ہے؟ باطنی پاکی، باطنی طہارت. تو اس کی جگہ کیا کرنا چاہیے؟ اخلاص، یقین، نیکی، محبت، حوصلہ، سچائی، اور پھر اپنے تمام نیت اور ارادے اور عمل میں رب کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ، یہ بہت ضروری ہے. اچھا، اب میں جو ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں انشاءاللہ اور آج کے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے ابھی تک اس کی طہارت کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، پاکی کی کیا حقیقت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ہم نے دیکھا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو پاکی ہے یہ کن چیزوں سے پاکی حاصل ہوگی، طہارت کیسے حاصل کی جائے. اس سلسلے میں پہلی چیز سادہ پانی. پانی جو ہے یہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمیشہ जैसे कोई भी जब बात की जाए तो जरूर ये देखा जाए कि इसका रिसोर्स क्या है, इसकी दलील क्या है। कुरान मजीद में सूरत अल फुरकान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, सूरत अल फुरकान आयत नंबर 48 अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वह अनज़लना मिनस समाई माअन माअन तहूरा, और हमने आसमान से पाक करने वाला पानी उतारा है, तो पानी पाक है। फिर आप देखें कि इसकी दलील में हमें ये हदीस भी मिलती है जिसके रावी हैं अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो, और इसे रवायत किया है मुसनद अहमद, अबू दाऊद, निसाई, तिर्मिजी और इब्ने माजा ने। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि एक आदमी ने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम समंदर का सफर करते हैं तो थोड़ा सा पानी साथ ले जाते हैं, अगर इससे वुजू कर लें तो प्यासे रह जाएं, क्या हम समंदर के पानी से वुजू कर लें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समंदर का पानी पाक है और इसमें मरा हुआ जानवर मछली हलाल है। फिर इसी तरह एक और मौके पर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, पानी पाक करने वाला है इल्ला ये कि इसकी बू, जायका और रंग पलीद चीज गिरने से बदल जाए। तो हमें क्या बात पता चली कि पानी उस वक्त तक पाक रहता है जब तक के पानी का रंग ना बदल जाए या उसका जायका। अगर उसका रंग बदल गया है या उसका जायका बदल गया है तब पानी जो है वो पाक नहीं रहता। हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा ने एक टब के पानी से गुसल फरमाया, पानी में गुंदे हुए आटे का असर था। इसे निसाई ने रवायत किया है। तो अब गुसल क्यों किया? पाकी के लिए। अब पानी जो इस्तेमाल किया उसमें आटे का थोड़ा सा असर था, हो सकता है आटा थोड़ा सा मिला हुआ हो या जो भी वजह, लेकिन आपने उससे तहारत की, तो ये चीज जो थी नापाक नहीं थी, ऐसी गलत नहीं थी, तो इससे जो है वो पाकी हासिल होगी। इससे हमें एक बात ये भी पता चलती है कि एक ही बर्तन से मियां बीवी गुसल भी कर सकते हैं। जैसे हिंदुआना जो मजहब है हिंदुओं का, उसमें ये है ना कि औरत को तो आमतौर पे गुनाहों की जैसे जो है वो गठली समझा जाता है, या ईसाइयों में भी, तो आप देखें कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के बारे में आता है कि वो एक ही बर्तन से जो थे वो उन्होंने वुजू किया। तो पहली चीज जो हमारे सामने आई कि तहारत सादा पानी से हासिल करनी है, दूसरी बात पाक जमीन से, पाक जमीन से, ऐसी जमीन जिसमें रेत, मट्टी, पत्थर सब शामिल है। और ये हमें कैसे पता चलता है? इसके लिए भी सूरत अन्निसा आयत 43 अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फलम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदा, और जब तुम्हें पानी मुयस्सर ना हो तो पाक मट्टी से तयम्मम कर लो। तो पाकी हासिल करने की दूसरी जो चीज है वो मट्टी है। और इस हिस्से में ये बात याद रखने वाली है कि ये जिस तरह पानी से तहारत होती है इसी तरह से मट्टी से। जैसे अगर कोई बहन है उसको जो है वो नहाना था, मियां बीवी का ताल्लुक कायम है, उसके बाद उसने जो है वो पाकी का गुसल करना है, कोई औरत है कोई मर्द है, अब पानी है नहीं, पानी एकदम खत्म है, तो अब क्या करते हैं कि वो लोग नहाते ही नहीं है। अक्सर औरतों के इस तरह के सवाल आते हैं कि पानी नहीं था, नहाना जरूरी था, इसलिए जो है फिर हमने गुसल नहीं किया और नमाज नहीं पढ़ी और नमाज हमारी कजा हो गई, इसलिए कि पानी का इंतजाम नहीं था। एक बात याद रखें कि जिस तरह से जो है वो पानी से पाकी हासिल होती है, अल्लाह ही ने ये हुक्म दिया कि जब तुम्हें पानी मुयस्सर नहीं है तो तुम मट्टी से पाकी हासिल कर लो। और इससे बाज लोग ये समझते हैं कि तयम्मुम करके नमाज तो पढ़ी जा सकती है लेकिन और कुछ नहीं किया जा सकता। तो एक बात याद रखें कि तयम्मुम करके सारे काम किए जा सकते हैं। जैसे अब गुसल करने की हाजत थी तो अब उसमें भी क्या है कि तयम्मुम करना है, क्योंकि पानी तो मुयस्सर ही नहीं है और तयमुन से जो है वो पाकी हासिल करनी है। इसलिए ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को आप याद रखें, इसे तिर्मिजी ने रवायत किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन सईद तय्यब तहूरुल मुस्लिम व इल्लम यजद अल मा अशरा सिनीन फइजा वजद अल मा फलयमिसहु बशारता। पाक मट्टी मुसलमान के लिए वजू है, चाहे 10 साल उसे पानी ना मिले, जब पानी हासिल हो जाए तो अपने जिस्म को इससे साफ करें। तो आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि 10 साल तक जो है वो मट्टी ना मिले, लेकिन असल बात क्या है कि इस हदीस से ये बात बताई जा रही है कि जब तक पानी मुयस्सर नहीं है तो फिर जो है वो मट्टी से तयम्मुम करके पाकी हासिल करनी है। अब इस सिलसिले में आप ये बात भी आप याद कर सकती हैं कि अगर जो है वो पानी जो है, पानी तो मुयस्सर है लेकिन पानी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मसलन कोई बीमार है और अगर वो पानी का इस्तेमाल करता है तो उससे जो है ना उसकी बीमारी बढ़ सकती है, तो इसलिए वो जो है वो नहा नहीं सकता या ये कि वो जिस्म के किसी खास हिस्से को धो नहीं सकता। और अगर वैसे अगर जरा सा भी किसी का खुश्क रह जाए तो पाकी हासिल नहीं है। यानी आप देखेंगे गुस्ल जनाबत है या पाक होना है तो बालों के जड़ों तक पानी जाना चाहिए, लेकिन अब ये कि बीमारी की वजह से वो पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता या सफर की वजह से वो पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता या शदीद सर्दी की वजह से, क्योंकि इतनी शदीद सर्दी है कि पानी तो गर्म नहीं हो सकता और ये खौफ है कि अगर जो है इसमें पानी का इस्तेमाल किया, नहाया, तो इससे जो है वो बीमार हो सकते हैं, और तो फिर क्या है कि इस बात की इजाजत है कि तयम्मुम किया जा सकता है। और इस सिलसिले में आप जो है वो ये बात याद रखें कि ये सारी बातें हमें कहां से पता चलती हैं, हमें ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा से और फिर कुरान मजीद से पता चलती हैं। सूरत निसा की आप देखिए ये आयत नंबर है 43, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, यहां पे फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलूना वला जुनुबन। अब यहां से जो है वो तहारत और पाकी के अहकामात शुरू होते हैं कि वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग्तसिलू व इन कुंतुम मर्दा, कि अगर तुम मरीज हो, औ अला सफरिन या सफर पर हो, दूसरी हालत क्या है सफर की तो पानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या पानी मुयस्सर नहीं है, तीसरी हालत क्या है औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइती, या तुम में से किसी ने जो है वो रफ़ हाजत की है, औ लामस्तुमुन निसा, या तुमने औरतों को छूया है, यहाँ पे किनाया है मियां बीवी के ताल्लुकात से, फलम तजिदु मान, यानी ये सारी हालतें हैं जो कि जिसमें जो है अब जरूरत है पाकी की और तुम्हें पानी भी मुयस्सर नहीं है, तयम्मुम सईदन तय्यिबन, तो फिर तुम पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो, फमसहु बिवुजूहकुम व अयदीकुम, और मसा कर लिया करो अपने हाथों का और अपने चेहरों का, इन्नल्लाह काना अफूवन गफूरा, तो बेशक अल्लाह जो है वो माफ करने वाला और बख्शने वाला है। इससे भी फिर हमें ये बात पता चलती है कि मट्टी से तहारत हासिल की जा सकती है, और मट्टी कौन सी जो पाक हो, तो पाक मट्टी जो है वो तहारत का एक बड़ा जरिया है। अच्छा, इसी तरह फिर आप ये बात भी याद रखें कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि नापाक हैं, और इसमें मुर्दार है, मुर्दार और मुर्दार से जो है वो पाकी हासिल नहीं की जा सकती क्योंकि वो खुद ही नजस है, सिवाय मुर्दा मछली, टिड्डी, मक्खी, मतलब ये पाक है लेकिन मुर्दार जो है ये हराम है। इसी तरह खून, ये भी नजस है। फिर सुअर, कुत्ता, पै, इंसान का पेशाब और पखाना, और फिर मजी और वदी। मजी और वदी, मुझे किसे कहते हैं? शहवानी जोश और हिजान के वक्त जो पतला और सफेद पानी, वो जो मखसूस जो प्राइवेट पार्ट है उससे निकलता है, और जिसके निकलने से जोश जो है, जोश और इस्तराब में एक सुरूर हासिल होता है कि निकलने का एहसास भी नहीं होता, तो इसे मुझी कहते हैं। और इसके बाद जब मनी निकलती है तो इसका निकलना बंद हो जाता है। तो एक तो है ये मुझी और दूसरा है मनी। तो वो मादा जिसके इखराज से आदमी की शहवानी ख्वाहिश की तकमील होती है और जोश ठंडा पड़ता है, उसको मनी कहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि रफ़ा हाजत के आदाब क्या हैं। सबसे पहला अदब ये है कि जब बैतुल खला में जाएं, बाथरूम में जाएं, तो दाखिल होने और निकल गिरने की दुआ पढ़नी चाहिए। ये दुआ अक्सर बहनों ने याद की भी होगी, अल्लाहुम इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। लेकिन याद कितने लोगों को रहता है कि इसको पढ़ना है ना? तो माशाल्लाह बाज़ घरों में बाहर लिखकर भी लगाया हुआ है, ये बहुत अच्छी जो है वो तरकीब है, तजवीज है, लेकिन बाथरूम के बाहर, अंदर नहीं, क्योंकि बैतुल खला के अंदर जो है ना, अल्लाह का नाम नहीं लेना चाहिए। और जो बाथरूम में, बैतुल खला में जब दाखिल होगा और ये दुआ पढ़ लेगा, तो वो जिन और इस तरह के जो असरात हैं, जो शैतानी चीजें हैं, उनसे वो महफूज रहेगा। क्योंकि इस दुआ में यही मांगा गया है, या अल्लाह मैं नापाक जिनों और जिन्नियों से तेरी पनाह मांगती हूँ। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। तो ये है दाखिल होने की मसनून दुआ, और बाहर निकलते वक्त गुफरानक। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला से बाहर आते तो गुफरानक, ए अल्लाह मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ फरमाते। इसे मुसनद अहमद ने रवायत किया है। तो बाहर निकलते वक्त जो है, जब गुफरानक कहा जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये दरअसल अल्लाह की मग़फ़रत तलब करना है। और बाहर निकलने की एक और दुआ भी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा वाअफ़ानी, कि शुक्र है उस रब का जिसने ये अज़ियत मुझसे दूर कर दी और मुझे जो है वो सुकून दे दिया। आप देखेंगे कभी हाजत हुई भी हो, पेशाब की या पखाने की, और उस वक्त जो है आप कुछ भी करना चाह रही हैं तो वो नहीं कर पाती, और हत्ता कि अगर हाजत है और आप नमाज पढ़ना चाह रही हैं कि चलो फिर वुजू नहीं करना पड़ेगा, तो ये भी पसंदीदा नहीं है। अगर हाजत है तो बेहतर है कि आप अपनी उस हाजत को दूर करें, फिर वुजू करें और फिर नमाज जो है वो पढ़ें, हत्ता कि जब नमाज बाद जमात ही क्यों ना खड़ी हो जाए, तो भी अपनी हाजत जो है उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि ध्यान जो है ना वो हाजत की तरफ रहेगा और नमाज की तरफ ध्यान नहीं होगा। और नमाज का मकसद क्या है? अकीम अस्सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। और ऐसी नमाज जिसमें ध्यान अपनी उस हाजत की तरफ है, तो उसमें तो अल्लाह को याद ही नहीं किया, बस एक ही है कि जैसे तैसे जो है ना इस फर्ज को अपने सर से उतार दिया जाए, फिर वुजू करना पड़ेगा। तो याद रखें कि इस सिलसिले में जो है वो, कि ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें ये सहूलत दी है। और आप उनसे पूछें जो जिन जो पेशाब करना चाहते हैं और उनको पेशाब आता नहीं है, या कभी पेशाब में रुकावट हो जाए, या फिर पखाने में रुकावट हो जाए, या फिर ये कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कि कतरा कतरा करके पेशाब बहता रहे, आता रहे, और इसी तरह जो है वो पखाना भी, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको समझ नहीं होती, या कोई बुढ़ापे में चला जाता है, या खुदा ना खास्ता किसी को लूज मोशन लग जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और अल्लाह ताला ने जो है अगर हमें कंट्रोल दिया है और फिर ऐसी जगह दी है और ये सेंस दी है, तो हम आते जाते दुआ पढ़ें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। कल ही एक बहन का मुझे फोन था, मेरी उनसे बात हुई, वो तकरीबन महीना भर हॉस्पिटल में रहकर जो है वो अभी बाहर आई है, उनका ऑपरेशन था और लंबे प्रोसीजर थे, और कहती हैं अपनी वो बात बता रही थी और रो भी रही थी बहुत कि एक वक्त ऐसा था कि बस मैं जो है डॉक्टरों की तरफ से जैसे जवाब था और मैं अल्लाह से रो रो के दुआ कर रही थी कि अल्लाह मुझे एक चांस और दे दे कि मैं जो हूँ वो मैं अपने आप को इस काबिल कर सकूं कि मैं तेरी मुलाकात करूं, मैं अपने गुनाहों की माफी मांग सकूं और मैं कुछ नेक काम कुछ इबादत कर सकूं। और अब वो कह रही है कि पूरा कुरान मैं पढ़ना चाहती हूं। तो डॉक्टरों की कह रही है कि टीमें थी और मुझे कुछ वक्त ऐसा था कि मैं डायलिसिस पे चली गई थी कि मतलब पेशाब भी कंट्रोल नहीं, खाना भी नहीं और कुछ भी नहीं, कुछ होश नहीं। तो बहरहाल कहती हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं जो हूँ दोबारा अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो जिंदगी दी। अभी मैं चल नहीं सकती, बहुत बातें नहीं कर सकती। और इसी तरह एक मेरी स्टूडेंट थी, उनको कतरा कतरा पेशाब आता रहता था और वो कहती थी कि हत्ता कि ना मैं गाड़ी चला सकती हूँ, ना मैं नमाज पढ़ सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। और आप देखें कि वक्त के साथ साथ अगर हम अपनी दादी नानी या वालदा का ख्याल रखें या बाज बहने जो बुढ़ापे में है कि इस तरह की तकलीफ जो है वो हो जाती है। तो असल बात क्या है कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम जो हैं अल्लाह ताला ने हमें ये बात जो है वो सिखाई है, तो हमें इन आदाब का ख्याल रखना चाहिए। बाज लोग कहते हैं कि हमें जैसे घर में कोई चीज महसूस होती है या जैसे घर में किसी का असर है, ये तो पहली चीज जो है वो पाकी का ख्याल रखना है, पाकी का ख्याल रखना बाथरूम आते जाते वक्त, और खुद भी बच्चे भी कपड़े भी सब चीजों में पाकी और सफाई का ख्याल रखा जाए। ये चीजें जो है ये जिन वगैरह या जो असरात हैं जादू टूना जहाँ पे असर होता है या ये जिन वगैरह ये उन्हीं जगहों पर बसेरा करते हैं जहाँ गंदगी होती है, जहाँ नापाकी होती है या जहाँ के जो लोग गंदे होते हैं वहां पे। इसका फिर दूसरा अदब ये है कि जब बैतुल खुला में जाया जाए तो अल्लाह ताला के नाम वाली कोई चीज साथ ना ले जाई जाए। ये हजरत अंत बिन मालिक रजी अल्लाह ने फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में जाने का इरादा करते तो अपनी अंगूठी उतार दिया करते थे। क्यों? उस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तहरीर था, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उनको अपना मिशन हर वक्त याद रखना था ना। हम तो अंगूठी पर क्या कहते हैं कि दिल बना हुआ है या फिर शौहर का नाम है, हत्ता के गले के अंदर भी। तो उनकी अंगूठी पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तहरीर था और वो जाते वक्त उतार देते थे। इसे तिर्मिजी निसाई और इब्ने माजा ने रवायत किया है। बाज लोग अल्लाह का नाम और खाना काबा और इस तरह की चीजें भी अपने गले में पहन लेते हैं, तो याद रखें कि जब बैतुल खला में जाएं तो उस वक्त ये चीजें जो है ये उतारनी चाहिए। और बाज लोग जो है वो बैतुल खला में जाने के बाद जो है वो बहुत सी दुआएं और चीजें जो है वो पढ़ते हैं, तो ये भी सही नहीं है, यानी उसके बाहर जो है वो पढ़ना चाहिए। फिर इस सिलसिले में एक और अहम अदब है जो नंबर 3 कि जब बैतुल खुला में दाखिल हुआ जाए तो बायां पांव पहले रखें। बायां पांव पहले क्यों? बायां पांव पहले रखना है, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। और वैसे भी जो है वो जब बैतुल खुला से बाहर आना है तो फिर कौन सा पांव पहले निकालना है? दायां निकालना है। तो ये तीसरा अहम अदब है। फिर चौथी जो अहम बात है वो ये है कि जब भी रफा हाजत करने के लिए बैठा जाए तो अपना मुंह या पीठ ये किबले की तरफ नहीं होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तस्तक्बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा बिग़ायतिन औ बौल। इसे सही बुखारी और सही मुस्लिम ने रवायत किया है। पखाना या पेशाब में न किबले की तरफ मुंह करो और ना ही पीठ। तो जब भी तहारत हासिल कर रहे हैं, पखाना करने जा रहे हैं, बैतुल खुला में जा रहे हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि खाना काबा या फिर किबला जो है उसकी तरफ जो है वो ना मुंह होना चाहिए और ना ही पीठ। फिर इस सिलसिले में जो है वो जो पांचवा अदब है वो ये कि जब आप रफा हाजत करने के लिए बैठें तो जब बहुत करीब हो ना तब कपड़ा अपना हटाएं। क्योंकि एक तो ये कि जैसे अब वॉशरूम में अगर हम चले गए हैं, बाथरूम में हैं, बैतुल खला में, अब यहां तो मसला नहीं, आपने दरवाजा बंद कर लिया। जैसे बाज दही इलाकों में, देहाती इलाकों में कहीं दूर लोग जाते हैं, यानी उनके पास जो है ये बैतुल खला का इंतजाम नहीं है, तो उस वक्त आके उसका सतर कोई देख ना सके। एक तो दूर जाए, लोगों की नजरों से ओट हो जाए उसकी, मतलब पर्दा सा हो जाए, और दूसरा ये कि जब बहुत ही वो करीब हो जमीन के तो उस वक्त अपना कपड़ा जो है वो हटाए। फिर इस सिलसिले में जो है वो छठा अदब ये है कि अगर कहीं जैसे बाहर कहीं करने की हाजत पेश आ गई है तो इस काम के लिए ना रास्ता होना चाहिए, ना साए की जगह, ना ही पानी के अंदर और ना ही फलदार दरख्त के पास ये हाजत पूरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन लानत के कामों से बचो, इत्तकु अल मलाइन सलासा। नंबर एक, घाट के करीब, नंबर दो, दरमियाना रास्ता, और नंबर तीन, साए में पखाना करने से। और इसी तरह एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलदार दरख्तों के नीचे कज़ाए हाजत करने से जो है वो मना किया है। फिर ये भी बहुत अहम बात है कि जब कज़ाए हाजत में कर रहे हों, बैतुल खला के अंदर हैं और आप अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, उस वक्त गुफ्तगू ना की जाए। आजकल ये बीमारी बहुत आम है कि लोग फोन लेके साथ जाते हैं। अब सोचे सही, सेल फोन है, घर का फोन है तो साथ लेकर गए हैं और अंदर से बातों की आवाज आ रही है। भाई ये तो आप बैतुल खला में बातों की आवाज आ रही है, कैसी बात है? और या फिर क्या है कि लोग अब अखबारें लेके अंदर जाते हैं, वैसे वो भी ऐसे लगता है कि वो जो है ना वो ड्राइंग रूम में या बेडरूम में या कुर्सी पर बैठे हैं, अखबार लेके जा रहे हैं, किताब लेके जा रहे हैं, सेल फोन लेके जा रहे हैं। इस्लाम हमें ये अदब और तहजीब नहीं सिखाता। तो उस वक्त जिस काम के लिए गए हैं उस वो कोई पसंदीदा जगह तो है नहीं कि वहां पे आप डेरे डालकर बैठ गए, तो जल्दी से जल्दी उससे जो है वो बाहर आना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमी कज़ाए हाजत के लिए जाएं तो एक दूसरे से छुप कर बैठें और आपस में बातें ना करें, क्योंकि इस पर अल्लाह नाराज होता है। तो आप देखें कि अब रफ़ हाजत के लिए गए हुए हैं और अगर फोन सुन रहे हैं या फोन पर बातें कर रहे हैं, या वैसे बाज़ुकात बाज़ माएं बाथरूम में ही अंदर से ही रफ़ हाजत करते वक्त बच्चों को इंस्ट्रक्शन देती जाती हैं, बोलती जाती हैं, तो ये चीज जो है ना ये सही नहीं है। तो और एक चीज की जब रूटीन बन जाएगी ना तो बच्चे भी आपको आवाज नहीं देंगे और बच्चों को पता होगा मम्मी ने बोलना नहीं है, है ना। तो जरूरी इस बात जरूरी बात क्या है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। और आप देखें कि जब नंगे होते हैं तो उस वक्त जो है फरिश्ते पर्दा करते हैं, वो हया महसूस करते हैं। अब जो कुछ भी हम कर रहे हैं उन्होंने नोट भी करना है, तो उनको इस तरह तकलीफ होती है। और वैसे भी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस हालत में अगर बातें की जाएंगी तो अल्लाह नाराज होगा, फइन्नल्लाह यमकुतु अला ज़ालिक, तो हमने से कौन बदकिस्मत है, कौन बदकिस्मत बनना चाहता है और अल्लाह को नाराज करना चाहता है। तो बहुत जरूरी है कि ऐसे वक्त में जो है वो गुफ्तगू जो है इससे बचा जाए और गुफ्तगू जो है वो ना की जाए। फिर इसी तरह इसका जो है एक और अहम अदब क्या है कि खड़े होकर पेशाब करने से जो है वो बाज रहा जाए। इस सिलसिले में ज्यादातर लड़के या मर्द जो हैं वो खड़े होकर पेशाब करते हैं। अगर किसी को कोई बीमारी है या तकलीफ है तो इसकी रुख्सत है, इसकी इजाजत है, लेकिन ये मगरिब की दुनिया या वैसे ही फैशन और रवाज पा जाए और खड़े होकर पेशाब किया जाए, ये चीज जो है ये सही नहीं है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ना फरमाती हैं कि जो शख्स ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे, इसकी तस्दीक मत करो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठकर पेशाब किया करते थे। इसे मुस्नद अहमद, निसाई, तिर्मिजी और इब्न माजा ने रवायत किया है। फिर इसी तरह हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ना फरमाते हैं, मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे कि हमारा गुजर किसी कौम के कूड़े क्रिकेट के ढेर पर हुआ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार के पीछे खड़े हुए और पेशाब किया, मैं आपसे अलग हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया ताकि पर्दा हो जाए, चुनाचे मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा हो गया हत्ता कि आप पेशाब से फारिग हो गए। इसे बुखारी ने रवायत किया है कि कभी ऐसा वाकया पेश आए कि पर्दे की जरूरत है और आप कहीं बाहर हैं, तो अब आप देखें कि हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक तरफ जो है दीवार और दूसरी तरफ वो रुख पीट करके खड़े हो गए ताकि जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ओट के अंदर अपनी जरूरत जो है वो उसको पूरा कर सके। फिर इसी तरह एक और आम बात कि अगर जो है वॉशरूम नहीं जा सकते, कोई बीमारी है, बुढ़ापा है, या फिर सर्दी है, या कोई तकलीफ है जिसकी वजह से बैतुल खला तक नहीं पहुंच सकते, तो अब क्या करें? अब बर्तन में की जा सकती है रफ़े हाजत, बर्तन में की जा सकती है। हजरत उमैमा रजी अल्लाह ने फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई के नीचे एक लकड़ी का प्याला रखा रहता जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त पेशाब किया करते। इसे अबू दाऊद और नसाई ने रवायत किया है। और इस वक्त जैसे बात नहीं करनी चाहिए, एक दफा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अनु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब कर रहे थे कि एक आदमी का उधर से गुजर हुआ, तो इसने आपको सलाम किया लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया। ये सही मुस्लिम की रवायत है। अच्छा, फिर इसका एक और अहम अदब है कि जब रफ़े हाजत कर ली तो अब तहारत कैसे हासिल की जाए, हाथों को कैसे जो है वो पाक किया जाए, या तो मिट्टी से या साबुन से। यानी उस जमाने में साबुन या इस तरह की चीजें तो इतनी नहीं थी। हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल जनाबत शुरू किया तो पहले अपने बाएं हाथ से शर्मगाह को धोया, फिर वो हाथ दीवार पर रगड़ा, फिर उसे पानी से धोया, फिर नमाज के वुजू की तरह वुजू किया, फिर उसके बाद गुसल। इसे बुखारी ने रवायत किया है। तो इससे हमें तीन चार बातें पता चलती हैं। पहली चीज कि दाएं हाथ का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी अपनी प्राइवेट पार्ट को धोते वक्त दाया हाथ नहीं लगाना चाहिए, इस्तंजा करते वक्त दाएं हाथ से पानी डालें, बाया हाथ जो है उसको इस्तेमाल करें। फिर दूसरी बात जो पता चली कि जो है वो अपने प्राइवेट पार्ट को जो है उसको धोते वक्त या मतलब जो है वो पखाना या पेशाब किया है उसको बाएं हाथ से हमने साफ किया और दाएं से पानी डाला, उसके बाद वुजू करने से पहले और गुसल करने से पहले बाएं हाथ को साफ करना जरूरी है, या तो मिट्टी से रगड़ कर या फिर साबुन वगैरह जो चीज भी वो लिक्विड है या दूसरा सोप है तो उससे जो है उसको साफ किया जाए, और गुसल करने से पहले वुजू और वुजू करने के बाद जो है फिर गुसल करना, ये जो है जरूरी है। अच्छा, इस सिलसिले में एक और अहम बात जो जरूरी है कि तहारत दाई तरफ से शुरू करनी चाहिए। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ने फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत करने, कंघा करने और जूता पहनने में दाई तरफ से आगाज करना पसंद करते थे। अब जैसे वुजू तहारत हासिल करना का जरिया है तो दाई तरफ से शुरू, नहाने लगे हैं, गुसल करने लगे हैं तो भी दाई तरफ के अजा को जो है वो पहले धोया जाए, बाईं तरफ को बाद में, और फिर उसके बाद जो है पानी जो है ऊपर डाल लिया जाए। अच्छा, अब हम ये भी देख लेते हैं कि जब पाकी हासिल करनी है तो किससे करनी है। इस सिलसिले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हड्डी या लिद इससे सब पाकी हासिल करने से मना किया। जैसे बाहर कहीं गए हुए हैं और देहाती इलाकों में भी, तो इसमें क्या है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिद और हड्डी से इस्तंजा ना करो, ये तुम्हारे भाई जिनों की खुराक है। जिन जो है ना ये खाते हैं हड्डियां और फिर लिद वगैरह। अब ऐसी चीज इस्तेमाल ना की जाए जो किसी दूसरे के काम आ सकती है, जैसे रुई वगैरह का टुकड़ा या कागज, इसी तरह खाने की चीजें वगैरह, तो ये चीज जो है ये जायज नहीं है। और दूसरी अहम बात इस सिलसिले में यह है कि दाएं हाथ से ढेले इस्तेमाल करना या इस्तंजा करना या शर्मगाह को छूना हराम है, यानी उस वक्त जब राइट हैंड दाएं हाथ से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई पेशाब करते वक्त अपने अपनी शर्मगाह को अपने दाएं हाथ से ना छुए और ना दाएं हाथ से इस्तंजा करें। फिर तीसरी बात ये कि ताक ढेले इस्तेमाल करें, अगर तीन के साथ सफाई ना हो तो पांच इस्तेमाल करें। और वैसे अब तो ये है कि पानी का इस्तेमाल, तो पानी उतना इस्तेमाल करना चाहिए जितना जरूरत है, और उतना पानी बैठने से पहले हमारे पास होना चाहिए जिससे जो है वो तहारत हासिल की जा सकती है। बाज लोग बैठ जाते हैं फिर पानी के लिए आवाजें देते रहते हैं कि मुझे पानी दे दे, और वैसे अगर करीब है तो फिर कोई मुश्किल नहीं है कि आप खुद से भी टैप को खोलकर पानी जो है वो ले सकते हैं। और इस सिलसिले में इस बात का जरूर ख्याल रखें कि बाज औकात जो है जैसे लोटा वगैरह है तो ऐसे कि जिससे सही से पानी सही जगह पर पहुंचकर तहारत हासिल हो सकती हो, और बाज औकात लोटे की बजाय जो है वो इस और चीज भी इस्तेमाल की जाती है, पाइप वगैरह। मुस्लिम शावर या जो भी वो टैप है। अच्छा, अब उससे पाइप से बाज औकात क्या होता है कि पानी इधर उधर बहुत जाता है और तहारत की बजाय जो है वो उल्टा नुकसान होता है, तो उसका भी आप देख लें कि ऐसे तो नहीं है कि वो जो भी निजस है या जो गंदगी है वो उससे उस पाइप से या मुस्लिम जो शावर है उससे जो है वो इधर उधर चली गई, शलवार पर चिड्डे लग गए या टांगों पर या इर्द गिर्द, तो उसका भी ख्याल रखना जो है वो जरूरी है। मतलब इस सिलसिले में ये बात भी याद रखने वाली है कि जब भी बैतुल खला का इस्तेमाल करें और जरूर उसको जो है ना उठने से पहले, उसको जब उठ जाए वहां से तो उसको जरूर साफ करें, दूसरे आने वाले के लिए उसका साफ रखना बहुत जरूरी है कि आने वाला अगर आपने इस्तेमाल किया कोई गंदगी है कोई गलत चीटे हैं तो ऐसा नहीं हो कि दूसरा जो है ना उसको जो है वो उसे गंदगी जो है वो मिले। जैसे हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा एक दफा औरतों से मुखातिब हुई, कहने लगी अपने शौहरों से कहो कि पानी के साथ अस्तंजा किया करें, मुझे इनसे ये बात करते हुए शर्म आती है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही करते थे। तो मर्द हो या औरतें या बच्चे, सबको अस्तंजे की जो है वो आदत डालनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर इसकी आदत ना डाली तो फिर बाद लोगों को, जैसे बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं तो उनको इस बात का एहसास ही नहीं रहता कि हमें तहारत जो है वो हासिल करनी है। तो पेशाब की नजासत हो या फिर पखाने की, तो जरूरी है कि उसको जो है वो हर सूरत में जो है वो अपने आप को जो है वो पाक किया जाए, साफ सुथरा किया जाए। तो इंशाल्लाह आज हमने जो है वो तहारत और पाकीजगी की इस्लाम में क्या हैसियत है, इसकी क्या जरूरत है, कुरान और हदीस की रोशनी में इसके हमने अहकामात देखे, और साथ ही रफ़ा हाजत के, कि रफ़ा हाजत के सिलसिले में इस्लामी आदाब जो हैं वो क्या हैं। और आइंदा इंशाल्लाह हम जो अगला हमारा दर्स होगा तो उसमें हम इंशाल्लाह देखेंगे वुजू, गुसल, तयम्मुम, हैज, नफास और इस्तेहाजा के जो अहकामात हैं इंशाल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैह।